ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप विजयी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल लगायत विश्व के नेताओं ने ट्रंप को दी बधाई। सरकार को कुशल एवं व्यवस्थित बनाने के लिए कांग्रेस एमाले सम्मिलित 8 सदस्यीय संयंत्र गठन। महापर्व छठ अंतर्गत तराई मधेश सहित काठमांडू में आज खरना विधि सम्पन्न। और संयुक्त राष्ट्र से इसराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने का आह्वान। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार जीत हासिल कर ली है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हराने के बाद ट्रंप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए। एसोसिएट प्रेस के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप को 277 इलेक्ट्रोल वोट मिले हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैरिस को 224 इलेक्ट्रोल वोट मिले हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए कुल 538 वोटों में से कम 270 इलेक्ट्रोल वोट प्राप्त होने चाहिए। ट्रंप को 51% यानी 7,11,83,000 पॉपुलर वोट मिले हैं, जबकि हैरिस को 6,62,51,000 पॉपुलर वोट मिले हैं। नतीजों की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने चुनाव अभियान मुख्यालय में मौजूद समर्थकों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि रिपब्लिकन आज के दिन को अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक के रूप में देखेंगे। अपने संबोधन के दौरान नेता ट्रंप ने सीमा प्रबंधन और देश को एकजुट करने की प्रतिबद्धता जताई और अपनी पत्नी मेलानिया और परिवार के सदस्यों समेत सभी शुभचिंतक मतदाताओं को धन्यवाद दिया। जारी मतगणना में जीत के लिए जरूरी 270 इलेक्ट्रोल वोट हासिल करने के बाद विश्व के नेताओं ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, यूरोपीय संघ के प्रमुख उर्सुला वॉन डेल लेयन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के प्रमुख मार्क रूट ने बधाई दी है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने डोनाल्ड ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति पौडेल ने आज सोशल मीडिया ट्वीट के माध्यम से राष्ट्रपति ट्रंप को उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल में पूर्ण सफलता की कामना की। उन्होंने विश्वास जताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में नेपाल और अमेरिका के रिश्ते मजबूत होंगे। सरकार को कुशल एवं व्यवस्थित बनाने के लिए 8 सदस्यीय संयंत्र का गठन किया गया है। नेकपा एमाले के प्रचार विभाग के प्रमुख राजेंद्र गौतम ने बताया कि नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले के बीच 7 सूत्रीय समझौते के अनुसार सरकार की प्रभावशीलता बढ़ाने और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्रीय स्तर का संयंत्र बनाया गया है। उस संयंत्र में नेकपा एमाले से वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उप प्रधानमंत्री तथा अर्थमंत्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल और उप महासचिव विष्णु रिमाल शामिल है। इसी तरह नेपाली कांग्रेस के उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्का, महामंत्री गगन थापा, गृहमंत्री रमेश लेखक और परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा शामिल है। केंद्र के साथ ही प्रदेश और जिला स्तरों में संयंत्र गठन करने की तैयारी की गई है। ये जानकारी प्रचार विभाग प्रमुख गौतम ने दी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल अजरबैजान के बाकू शहर में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP29 के पक्षकारों के 29वें सम्मेलन में भाग लेने इसे कार्तिक 25 गते उस ओर प्रस्थान करेंगे। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के निमंत्रण पर राष्ट्रपति पौडेल सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक उच्च स्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए बाकू जाने वाले हैं। सम्मेलन में पर्वतीय क्षेत्रों में जलवायु संबंधी क्षति और हानि के समाधान पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी होगी। विश्व में नेपाल जलवायु के प्रभाव से सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक है। बैठक में नेपाल मेलम्ची, मुस्तांग, कंचनपुर थामे, काठमांडू घाटी और अन्य क्षेत्रों में असामान्य मौसम की घटनाओं के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान की जानकारी देगा। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि NTC को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज खरना विधि पूरी हुई है। पर्व के पहले दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि के दिन मंगलवार को नहाए खाए करने वाले लोग आज कार्तिक शुक्ल पंचमी तिथि के दिन खरना करते हैं। सुबह पवित्र स्नान करने और पूरे दिन उपवास करने के बाद व्रतालु रात में सखर में पकाई गई खीर कुल देवता देवी और छठी देवी को चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप घर के सभी सदस्यों और खुद खाते हैं। इस विधि को खरना कहा जाता है। कल पर्व के तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को सूर्य उपासना का व्रत रखकर शाम को व्रतालु जलाशय में बने सुरमय घाट पर पहुंचकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगी। पिछले कुछ सालों से काठमांडू में भी छठ पर्व बड़ी धूमधाम से मनाई जाने लगी है। इस बार भी छठ शुरू होने के बाद काठमांडू घाटी में नदियों, तालाबों और झीलों के तटों पर सजावट शुरू हुई है। घाटी में भी छठ पर्व की तैयारी शुरू होने के बाद बागमती नदी का जल स्तर बढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है। मिथिलांचल में भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना जाने वाला सामा चकेवा पर्व आज से शुरू हो गया है। सामा चकेवा उत्सव कार्तिक शुक्ल पंचमी से शुरू होकर 10 दिनों तक चलता है और 11वें दिन पूर्णिमा के दिन रात्रि में सामा चकेवा के विसर्जन के साथ उत्सव का समापन होगा। आज से 10 दिनों तक मिथिलांचल की बहनें, महिलाएं अपने भाई बहनों की लंबी उम्र की कामना करते हुए मिथिला के हर गांव और सार्वजनिक स्थानों पर सामा चकेवा खेलेंगी। बता दें कि सामा चकेवा लोक पर्व की शुरूआत द्वापर युग में भगवान कृष्ण के समय से हुई। त्यौहार भगवान कृष्ण की बेटी सांब और बेटे सांभा की कहानी पर आधारित है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सेहत में सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री के सचिवालय के मुताबिक प्रधानमंत्री ओली के इलाज में शामिल डॉक्टरों के मुताबिक सभी स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट सामान्य है। प्रधानमंत्री ओली सामान्य बुखार के कारण अत्यावश्यक बैठकों के अलावा कोई बैठक या कार्यक्रम किए बिना मंगलवार से बालवाटार में आराम कर रहे हैं। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने संचार सेवा सहज बनाने का निर्देश किया है। आज जिला हुलाक कार्यालय का अनुगमन करते हुए जिला के सभी क्षेत्रों तक संचार सेवा सहज बनाने का निर्देश किया है। इस अवसर पर उन्होंने टेलीफोन नेटवर्क के विषय में स्थानीयों से राय सुझाव लिया था। इसी तरह जिला स्तरीय सरकारी कार्यालयों के अनुगमन के बाद संचार मंत्री गुरुंग ने बीसी शहर चामे सड़क निर्माण कार्य को तीव्रता से आगे बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने इसराइल के लिए नेपाली राजदूत पद पर प्राध्यापक डॉक्टर धनप्रसाद पंडित को नियुक्त किया है। नेपाल के संविधान के मुताबिक मंत्रिपरिषद की सिफारिश में राष्ट्रपति पौड़ेल ने पंडित को इसराइल के लिए नेपाल के आवासीय राजदूत पद पर नियुक्त किया है। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा आज जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में आज से सोशल नेटवर्क टिकटॉक को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत कर लिया गया है। सोशल नेटवर्क के उपयोग के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देशों में ये प्रावधान है कि जो व्यक्ति, कंपनियां या संगठन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म संचालित करना चाहता है उन्हें दिशा निर्देशों के अनुसार मंत्रालय में पंजीकृत कराना होगा। छठ पर्व से जुड़े गीत गाकर प्रसिद्धि पाने वाली भारतीय लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। भारतीय मीडिया के अनुसार 72 वर्षीय गायिका सिन्हा, जिनका भारत की नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा था, मंगलवार शाम को उनका निधन हो गया। भोजपुरी और मैथिली लोक गायिका सिन्हा द्वारा गाए गए लोक गीतों को सभी पसंद किया करते हैं। भारतीय लोक गायिका सिन्हा को भारत के सबसे प्रतिष्ठित पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुके हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल नेटवर्क एक्स पर लोक गायिका सिन्हा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजिप्ट और टर्की के नेतृत्व और दर्जनों देशों के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र के समक्ष इसराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया गया है। ऐसा आह्वान ऐसे वक्त आया है जब लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भीषण युद्ध चल रहा है। इजिप्ट के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के लगातार उल्लंघन को रोकने के लिए इसराइल पर दबाव बनाने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के तहत कॉल में शामिल हैं। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप विजय। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़े लगात विश्व के नेताओं ने ट्रंप को दिया बधाई। सरकार को कुशल एवं व्यवस्थित बनाने के लिए कांग्रेस से माले सम्मिलित 8 सदस्यीय संयंत्र गठन महापर्व छठ अंतर्गत तराई मधेश सहित काठमांडू में आज खरना विधि संपन्न और संयुक्त राष्ट्र से इसराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने का आह्वान। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।